मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 5 सितंबर 2019 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले कि आज मैं अपने विषय की शुरुआत करूं, मैं एक सूचना देना चाहूंगा। और सूचना यह है कि मैडम प्रीति अग्रवाल अभी कुछ दिनों के लिए भारत से बाहर गई हुई थी, इसलिए कुछ स्टूडेंट जो लगातार उनसे अपने लाइफ के बारे में सलाह लेना चाह रहे थे वो फोन कर रहे थे, लेकिन फोन पर उनकी बात नहीं हो पा रही थी। तो अब सूचना यह है कि वो विदेश से वापस आ गई हैं और आप आज से उनसे 6 बजे से 9 बजे तक शाम को जो टाइम निर्धारित है उनसे बात कर सकते हैं। और उनका जो मोबाइल नंबर है वो आप लोगों को मालूम है, लेकिन मैं फिर से यहां बता दे रहा हूं। डॉक्टर प्रीति अग्रवाल का मोबाइल नंबर है 9644624449। मैं नंबर रिपीट कर रहा हूं, 9644624449। इस नंबर पर आप शाम को 6 बजे से 9 बजे तक उनसे बात कर सकते हैं। और इस बीच में जिन्होंने फोन किया बात नहीं हो सकी, इसके कारण उनको परेशानी उठानी पड़ी, इसके लिए मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल ने बहुत अफसोस व्यक्त करते हुए आप सबसे क्षमा चाहिए है। तो दोस्तों, आइए अब हम लोग अपने विषय पर बात करते हैं। और आज के इस लाइफ मैनेजमेंट की शुरुआत मैं थोड़ा अलग तरीके से मित्रों करना चाह रहा हूं और थोड़ा थोड़ा बदलते भी रहना चाहिए पैटर्न को। आपको मालूम है कि हमारा जो चंद्रयान है वो 22 जुलाई को छोड़ा गया है, प्रक्षेपित किया गया है चंद्रमा की धरती पर उतरने के लिए। डेट याद रखिए 22 जुलाई। और अभी तक हमारा पूरा अभियान बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है और उम्मीद की जा रही है, और हमें पूरी उम्मीद है पूरे देश को पूरी दुनिया को कि 7 सितंबर को यानी कि 2 दिन बाद ही हमारा यान चंद्रमा की धरती पर सकुशल उतर जाएगा। तो यूं कह लीजिए कि ये लगभग लगभग 1.5 महीने की यात्रा हुई। और आपको मालूम है कि जो जिस रॉकेट से भेजा गया है उसकी स्पीड क्या है, चलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। यानी कि 1.5 महीने की लंबी यात्रा के बाद हमारा चंद्रयान चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। अब चलिए हम एक मजेदार कल्पना करते हैं। और मजेदार कल्पना ये, मान लीजिए कि हिंदुस्तान का कोई रियल एस्टेट का मालिक जो जमीन की खरीद फरोख्त करता है चंद्रमा पर जाकर प्लॉट काटे। देखिए, वहां एकड़ के हिसाब से तो जमीन बिक नहीं सकती है, साथ ही साथ मुझे तो लगता है कि मीटर के हिसाब से भी बिकना बहुत मुश्किल होगा, उसकी कीमत कितनी होगी, फिट प्रति फिट के हिसाब से भी थोड़ा सा बिकना मुश्किल होगा। तो वहां तो शायद अगर जमीन की कीमत निर्धारित भी की जाएगी तो प्रति वर्ग इंच। और वो जो प्रति वर्ग इंच जमीन का जो क्षेत्रफल निर्धारित किया जाएगा उसकी कीमत वो कितनी रखेगा, वो जो रियल एस्टेट का जो मालिक होगा, जो प्रॉपर्टी वाला होगा, प्रॉपर्टी एजेंट होगा, वो उसकी कीमत कितनी रखेगा। बस ये मैं यूं ही हंसी मजाक में आपसे पूछ रहा हूं। और आप देखिए कि ये तो केवल अभी का अभियान नहीं है, कब से चंद्रमा के रास्ते की तलाश हो रही है, इससे पहले उस पर कितना खर्च हो चुका है, वहां तक पहुंचने का कितना खर्च होगा, फिर वहां सारी व्यवस्थाएं करने का कितना खर्च होगा, ये सब आप अपने दिमाग में लाइए, तभी आप शायद कुछ सही कीमत तक पहुंच सकें कि वहां 1 इंच जमीन की कीमत कितनी होगी। और यदि हमें वहां अपनी छोटी सी झोपड़ी भी बनानी पड़ी तो हमें कितने इंच जमीन की जरूरत होगी और फिर उस झोपड़ी की कीमत कितनी होगी। थोड़ा सा मजेदार कैलकुलेशन है, लगा करके देखिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है लाइफ मैनेजमेंट से। मित्रों, मतलब है, चलिए ये तो मैंने चंद्रमा की बात कही, मंगल ग्रह है और दुनिया भर के ऊपर ग्रह है, मंगल पर भी व्यक्ति पहुंच रहा है और पता नहीं कहां कहां पहुंचेगा, वी डोंट नो। यानी कि धरती से जितना हम ऊपर चलते चले जाएंगे जमीन की कीमत उतनी अधिक होती चली जाएगी, एक सामान्य सा सिद्धांत। अब मेरा एक दूसरा प्रश्न है, देखिए मैं आज आप लोगों को कुछ प्रश्न दे रहा हूं, इसके लिए माफी चाहूंगा। अब मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि इस पृथ्वी पर इतने सारे प्राणी हैं, प्राणी और जीव जंतुओं की ही बात करते हैं ना, वनस्पति को छोड़ देते हैं, चलिए प्राणियों की हम बात करते हैं, इतने सारे प्राणी हैं, पता नहीं कितने छोटे से छोटी प्राणी से लेकर के और डायनासोर जैसे विशाल प्राणी रहे, उनका अस्तित्व शेष नहीं रह गया लेकिन थे तो वो विशाल प्राणी रहे हैं। इन सभी प्राणियों में आप सर्वश्रेष्ठ प्राणी किसे मानते हैं? आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि इन सभी में जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है वह मनुष्य है, और वास्तव में मनुष्य है। तुलसीदास जी ने तो लिखा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, यानी कि बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिलता है। और हमारे यहां जो मान्यता है वो है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं मनुष्य का शरीर मिलता है, मनुष्य की योनि में हम आ पाते हैं। यानी 84 लाख प्राणियों के रूप में हम पहले जन्म ले चुके होते हैं, तब कहीं मनुष्य का शरीर मिलता है। और यह मनुष्य का शरीर का मिलना ही अपने आप में इस बात का प्रमाण है, भारतीय दर्शन की बात मैं कर रहा हूं, कि हमने कोई बहुत बड़े कर्म, पुण्य कर्म किए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे, तभी मनुष्य का शरीर मिला। और हमारे यहां यह भी मान्यता है कि हमारे जो देवता हैं, जो स्वर्ग में रह रहे हैं, वह भी मनुष्य का तन प्राप्त करने के लिए तरसते रहते हैं, क्योंकि स्वर्ग में रह के वो क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, उबे हुए हैं, स्वर्ग में वही चीजें हैं, देख रहे हैं, करने को कुछ है नहीं, तो वो उबे हुए हैं, वो भी चाहते हैं कि यार हमें मनुष्य का शरीर मिले तो हम धरती पर जाएं और फिर वहां के जीवन का आनंद उठाएं। यानी कि अब देखिए दो बात हो गई, पहला होमवर्क मैंने मैथमेटिक्स आपको ये दे दिया कि आप कैलकुलेट कीजिए कि 1 इंच जमीन की कीमत चंद्रमा पर कितनी होगी, और वहां एक अगर मुझे छोटी सी झोपड़ी बनानी है जिसमें कि चलिए हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा रह रहे हैं, तो कितने इंच में वो झोपड़ी बन जाएगी या मकान बन जाएगा, तो उसकी कुल कीमत कितनी होगी। पहला कैलकुलेशन आपको ये करना है, और दूसरा कैलकुलेशन नहीं है, दूसरा प्रश्न है जिसका उत्तर ढूंढना है कि मनुष्य अगर सर्वश्रेष्ठ प्राणी है इस धरती पर तो वह क्यों है, आखिर उसमें ऐसा क्या है। देखिए शारीरिक क्षमता को आप देखिए तो हाथी वाथी तो हमसे पता नहीं बाघ शेर कितने गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं, तेज भी वो चलते हैं, बहुतों का जीवन हमसे कई गुना ज्यादा है, बहुतों की संख्या हमसे बहुत जीव जंतुओं की संख्या हमसे बहुत ज्यादा है, दूसरों में और कुछ बहुत ऐसी क्षमताएं हैं जो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा मनुष्य के पास क्या है कि उसे श्रेष्ठ प्राणी मान लिया गया है? दोस्तों इन दोनों प्रश्नों के आप उत्तर ढूंढिए। मुझे मालूम है कि जो पहला वाला कैलकुलेशन होगा तो वो थोड़ा सा विचित्र सा होगा, लेकिन चलिए फिर भी करके देखिए, आप अपने अपने उत्तर ढूंढ लीजिए। कल के अपने लाइफ मैनेजमेंट में मैं इन दोनों के उत्तर आपको प्रोवाइड करूंगा, दोनों के उत्तर, और फिर हम इन दोनों के उत्तरों को जोड़ करके शायद लाइफ मैनेजमेंट के लिए कुछ निकाल सकें, और जो निकालेंगे वो शायद हमारे बहुत काम का हो सके। आप यूं कह लीजिए कि हम अब दही को मथ रहे हैं, पहले तो दही बना लें, दही को मथने के बाद देखते हैं कि उसमें से किस तरह का घी निकल पाता है। तो मित्रों आज मैंने आपको सिर्फ होमवर्क दिया है, थोड़ी सी मेहनत करें, इस पर कुछ काम करें, कल के लाइफ मैनेजमेंट की प्रतीक्षा करें, शायद आपको थोड़ी नई बात लगे और थोड़ा अलग तरह का मजा भी आए। तो आज के लाइफ मैनेजमेंट को अब मैं दोस्तों यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।